कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति का शरीर पूरे 40 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के रहता है।
जो कि बहुत लंबा समय है।
बिल्कुल। अंगों का रंग नीला पड़ने लगता है और डॉक्टर उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर देते हैं। मतलब आधुनिक मेडिकल साइंस तो यही कहती है ना कि अब वापसी नामुमकिन है।
हाँ, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई वापस नहीं आता।
लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उस मेडिकल साइंस की हर स्थापित धारणा को पूरी तरह चुनौती दे देता है। वो व्यक्ति न केवल जीवित होता है बल्कि उसके दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
अरे वाह, ये तो मतलब सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता
है ना। आमतौर पर ऐसी घटनाओं को हम बस मिथक या कोई पुरानी कहानी मान लेते हैं, लेकिन जब ये दावे प्राचीन पन्नों से निकलकर आज की आधुनिक मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्सरे मशीनों तक पहुंचते हैं तो चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं।
और सच कहूं तो यही वो बिंदु है जहां इतिहास, विज्ञान और मानवीय गवाही आपस में टकराते हैं।
सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर उतरने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि क्या प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों, विशेषकर गॉस्पल की कहानियां, केवल बाद में गढ़ी गई किंवदंतियां हैं,
या फिर उनके पीछे ऐसे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जिन्हें आज के आधुनिक मापदंडों पर भी परखा जा सकता है।
बिल्कुल। और आज हमारे इस विश्लेषण का मुख्य आधार हैं डॉक्टर क्रेग कीनर के व्याख्यान के नोट्स और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक और आधुनिक चिकित्सा साक्ष्य। मतलब हम ये देखेंगे कि क्या हम सच में खुले दिमाग से सबूतों को देखते हैं,
क्योंकि अक्सर लोग प्राचीन चमत्कारों को केवल आस्था का विषय मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर कीनर का शोध इसे एक अलग ही दिशा में ले जाता है।
तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मेरा सबसे बुनियादी सवाल यह है कि चमत्कारों पर बात करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जिस किताब से ये कहानियां आ रही हैं, क्या वो वाकई उसी दौर की हैं?
बिल्कुल। और इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में भाषाई सुरागों को खोजना पड़ता है। देखिए, भाषा किसी भी कालखंड का सबसे प्रमाणिक फिंगरप्रिंट होती है।
अच्छा, भाषाई फिंगरप्रिंट मतलब कैसे?
मतलब अगर हम पहली सदी के फिलिस्तीन की बात करें तो वहां का आम जनजीवन और खुद येशु और उनके अनुयायी मुख्य रूप से अरामी भाषा बोलते थे।
अरामी यानी अरेमिक। ठीक है।
लेकिन जो गॉस्पल्स हमें मिलते हैं वे मुख्य रूप से ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। अब इतिहासकार ये देखते हैं कि क्या ये ग्रीक किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो मूल रूप से ग्रीक संस्कृति का था, या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अरामी संस्कृति से आया था।
ओह, क्योंकि एक अच्छा अनुवाद हमेशा अपनी मूल भाषा की छाप छोड़ देता है।
एग्जैक्टली।
इसको समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, दाल में काला होना।
हाँ, बहुत आम मुहावरा है।
अब अगर मैं इसका अंग्रेजी में सीधा अनुवाद कर दूं, ब्लैक इन द लेंटल, तो किसी मूल अंग्रेजी बोलने वाले को लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है।
हाँ, व्याकरण से ही हो सकता है, लेकिन सुनने में एकदम अटपटा लगेगा।
बिल्कुल। लेकिन वो अटपटापन ही तो ये साबित कर देगा ना कि बोलने वाला मूल रूप से भारतीय है।
बहुत सही एनालॉजी दिया आपने। और गॉस्पेल में हमें ठीक ऐसे ही भाषाई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। डॉक्टर कीनर बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं, सुई के छेद से ऊंट का निकलना।
ये किसी असंभव काम को दर्शाने के लिए कहा जाता है ना।
हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में बेबीलोन के यहूदी शिक्षक जब किसी असंभव काम की बात करते थे तो वे सुई के छेद से हाथी के निकलने की बात करते थे।
अच्छा, हाथी।
हाँ, क्योंकि बेबीलोन और उसके आसपास हाथी सबसे बड़ा जानवर था।
लेकिन एक मिनट, जूडिया और गलील के इलाकों में तो हाथी होते ही नहीं थे।
बिल्कुल नहीं होते थे। वहां का सबसे बड़ा जानवर ऊंट था, इसलिए गॉस्पेल में हाथी की जगह ऊंट का जिक्र हुआ।
अरे वाह, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भौगोलिक विवरण चीख चीख कर कह रहा है कि ये कहानी बाद में किसी दूर बैठे ग्रीक लेखक ने नहीं गढ़ी है।
सही कहा। ये उसी विशिष्ट स्थानीय संस्कृति की जमीनी हकीकत से निकली है। एक और बहुत बड़ा सुराग है, मनुष्य का पुत्र यानी सन ऑफ मैन का उपयोग।
अच्छा, इसमें क्या खास है?
अगर कोई ग्रीक भाषा का जानकार इसे पढ़ेगा तो उसे ये बहुत बेतुका लगेगा। ग्रीक साहित्य में ऐसे बात करने का कोई चलन ही नहीं था। लेकिन अगर हम इसे वापस अरामी भाषा में देखें, जहां इसे बार निश कहा जाता है, या हिब्रू में बेन आदम, तो ये उस समय की बहुत ही आम कहावत थी।
यानी अनुवादकों ने यीशु के बात करने के मूल अरामी तरीके को वैसा का वैसा ही ग्रीक में डाल दिया।
हाँ, भले ही वो ग्रीक व्याकरण के हिसाब से अजीब क्यों ना लगे।
तो ये बात तो तय हो गई कि ये कहानियां उसी दौर और उसी भौगोलिक क्षेत्र की हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें पीढ़ियों तक केवल सुनी सुनाई बातों के रूप में फैलती रहीं?
या कोई प्रत्यक्षदर्शी था?
हाँ,
ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्हें लिखा किसने।
देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का पता लगाने के लिए इतिहासकारों ने लूक की जो एक्ट्स की किताब है उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है। इसमें एक अजीब सा पैटर्न है।
कैसा पैटर्न?
विवरण देते देते लूक अचानक से हम शब्द का इस्तेमाल करने लगता है।
हम?
हाँ, जैसे हम वहां गए या हमने यात्रा की। लूक ने ज्यूडिया में करीब 2 साल बिताए थे, जहां उसने सीधे उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था।
देखिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी
जी,
क्योंकि एक आम श्रोता के मन में संदेह आ सकता है।
हाँ, बताइए।
क्या ये हम का इस्तेमाल केवल एक साहित्यिक शैली, मतलब एक लिटरेरी डिवाइस नहीं हो सकता, ताकि कहानी थोड़ी रोमांचक लगे और पढ़ने वाले को लगे कि वो भी सफर का हिस्सा है? यह सवाल बहुत से आलोचक उठाते हैं, लेकिन हमें प्राचीन इतिहास लेखन के नियमों को समझना होगा। उस जमाने में, जैसे रोमन या ग्रीक इतिहास में, इस तरह की साहित्यिक शैली का कोई चलन नहीं था।
अच्छा।
हाँ, कोई उपन्यासकार ऐसा कर सकता था, लेकिन जब पॉलीबियस या टैसिटस जैसे इतिहासकार लिखते थे, तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में हम का मतलब वाकई लेखक की शारीरिक मौजूदगी होता था।
मतलब वो झूठ मूठ का हम नहीं लिख सकता था।
बिल्कुल नहीं। प्राचीन मानकों के अनुसार ल्यूक दावा कर रहा है कि वो खुद वहां मौजूद था।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। और एक और चीज जो मुझे शोध में बहुत चौंकाने वाली लगी, वो है इन लेखकों की कुछ विवादित मुद्दों पर चुप्पी।
ओ, आप खतने वाले विवाद की बात कर रहे हैं?
हाँ, शुरुआती ईसाई समाज में खतना यानी सर्कमसेशन को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। ये सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि पहचान का मुद्दा था।
सही कहा, यह उस समय का सबसे ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा था। चर्च लगभग 2 हिस्सों में बंटने वाला था।
अब सोचिए, अगर गॉस्पेल के लेखक केवल कहानियां गढ़ रहे होते हैं,
तो वे आसानी से अपनी बात मनवाने के लिए यीशु के मुंह से कोई बयान गढ़ सकते थे।
बिल्कुल, वे इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चारों गॉस्पेल में इस मुद्दे पर यीशु का एक भी बयान नहीं है।
और इतिहासकारों की भाषा में इसे असहजता का सिद्धांत या क्राइटेरियन ऑफ एम्बैरेसमेंट कहते हैं।
मतलब लोग आमतौर पर ऐसी झूठी कहानियां नहीं करते जो उनके अपने ही समुदाय के लिए असहज करने वाली हों।
एग्जैक्टली, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महिलाओं की गवाही।
ओ हाँ, उस समय के रोमन और यहूदी समाज में महिलाओं की गवाही को अदालत में पुरुषों के बराबर तो माना ही नहीं जाता था।
जोसेफस जैसे प्राचीन इतिहासकारों के लेखों से साफ है कि कानूनी तौर पर महिलाओं की गवाही की अहमियत बहुत कम थी।
फिर भी जब सबसे बड़ी घटना यानी पुनरुत्थान या मृत्यु के बाद जीवित होने की बात आती है, तो गॉस्पेल बताते हैं कि इसकी पहली गवाह महिलाएं थीं।
आज उस पर विश्वास करे तो वो कभी भी महिलाओं को मुख्य गवाह क्यों बनाता?
कभी नहीं बनाता। वो समाज के सबसे सम्मानित पुरुषों को सामने लाता।
महिलाओं को पहला गवाह बताना अपनी ही कहानी को कानूनी रूप से कमजोर करने का एक बहुत बड़ा जोखिम था। उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वास्तव में यही हुआ था। सत्य को नहीं बदला गया।
वाह, मतलब वे ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन अगर ये चार गॉस्पल ऐतिहासिक रूप से इतने प्रामाणिक हैं, तो फिर उन खोए हुए गॉस्पल का क्या?
खोए हुए गॉस्पल?
हाँ, जिनके बारे में हम अक्सर इंटरनेट पर अफवाहें सुनते हैं। क्या चर्च ने सच में कुछ असली कहानियों को छिपा लिया था?
ये एक बहुत ही लोकप्रिय मिथक है, जिसे फिल्मों में बहुत सनसनीखेज बनाया जाता है, लेकिन असल में वे कभी खोए हुए नहीं थे। उन्हें जानबूझकर खारिज किया गया था।
खारिज किया गया था?
हाँ।
क्यों?
क्योंकि प्राचीन काल की 40 ज्ञात सूचियों में से 95% से अधिक में केवल इन्हीं 4 गॉस्पेल को मान्यता मिली है। बाकी के ग्रंथों को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि वे मूल घटनाओं के बहुत समय बाद 2री या 3री सदी में लिखे गए थे।
क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं?
थॉमस का गॉस्पेल ले लीजिए। यह 2री सदी के मध्य में लिखा गया था और इसमें नॉस्टिक विचारधारा की बहुत गहरी झलक है।
एक मिनट, जो नए श्रोता हैं उनके लिए, ये नॉस्टिक विचारधारा क्या होती है?
नॉस्टिसिज्म पहली सदी का यहूदी विचार नहीं था। ये बाद में पनपी एक ग्रीक दार्शनिक विचारधारा थी जो मानती थी कि भौतिक दुनिया बुरी है और केवल गुप्त ज्ञान से आत्मा की मुक्ति हो सकती है।
अच्छा, तो थॉमस के गॉस्पेल में क्या लगे?
उसमें यीशु को एक यहूदी शिक्षक के बजाय दूसरी सदी के एक ग्रीक दार्शनिक की तरह बात करते हुए दिखाया गया है जो रहस्यमयी ज्ञान बांट रहा है।
मतलब वो पूरी तरह से एक अलग सांस्कृतिक माहौल की उपज था।
बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला है सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ मार्क का।
हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसे 20वीं सदी में मॉर्टन स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने खोजा था ना?
उसने दावा किया था कि ये एक प्राचीन मठ में मिला गुप्त दस्तावेज है।
तो क्या वो असली था?
दशकों तक बहस चली, लेकिन जब भाषाविदों ने गहराई से जांच की तो परतें खुल गईं। अब विद्वान इसे पूरी तरह से एक जालसाजी यानी फॉर्जरी मानते हैं।
फॉर्जरी मतलब उसने खुद लिखा था?
हाँ, उस पाठ में कुछ ऐसे चुटकुले और आधुनिक पश्चिमी विचार शामिल थे जो प्राचीन काल में मौजूद ही नहीं थे।
अरे बापरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आधुनिक समय का कोई फैन फिक्शन हो।
बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फैन फिक्शन।
सोचिए, किसी मशहूर लेखक के मरने के 100 साल बाद कोई फैन अपनी मर्जी से कहानी लिख दे और फिर दावा करे कि ये मूल लेखक की ही किताब है।
इसीलिए विद्वान इन अपोक्रिफल गॉस्पेल को बस प्राचीन उपन्यास मानते हैं। वे ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बाद के लोगों की कल्पनाएं हैं।
तो इतिहास की कसौटी पर तो ये 4 ग्रंथ खरे उतर गए। लेकिन अब हम उस बिंदु पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विवादित है,
चमत्कारों के दावे।
हाँ, ग्रंथों के अंदर जो चमत्कारों के दावे हैं उनका क्या? क्या आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में कोई इन पर विश्वास कर सकता है? यहीं पर डॉक्टर कीनर का शोध मेडिकल साइंस में एंट्री मारता है।
और ये एक बहुत ही स्वाभाविक वैचारिक टकराव है। देखिए, 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे डेविड फ्रेडरिक स्ट्राउस। उनका मानना था कि प्रत्यक्षदर्शी कभी चमत्कारों का दावा करते ही नहीं है।
उनका तर्क क्या था?
बहुत सीधा था, चमत्कार कभी होते ही नहीं है, इसलिए जो भी चमत्कारों की बात कर रहा है वो या तो झूठ बोल रहा है या वो बहुत बाद में गढ़ी गई कहानी है।
लेकिन मैंने सुना है कि स्ट्रॉस के अपने ही जीवन में एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई थी।
बहुत बड़ी। उनके अपने बेहद करीबी दोस्त एडवर्ड मोरिका को रीढ़ की हड्डी की एक बहुत गंभीर बीमारी थी। वे चल फिर नहीं सकते थे।
अच्छा।
लेकिन पादरी ब्लमहार्ट की प्रार्थना के बाद वे न सिर्फ पूरी तरह ठीक हुए बल्कि पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने लगे।
ट्रेकिंग करने लगे, तो स्ट्रॉस का क्या रिएक्शन था?
स्ट्रॉस ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि यह कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा।
ये तो अजीब बात है, प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, मेडिकल तथ्य मौजूद थे।
लेकिन उनका दार्शनिक ढांचा उन्हें इसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था।
मतलब जब हमारा पूर्व निर्धारित नजरिया बन जाता है तो हम ठोस सबूतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं।
बिल्कुल। और डॉक्टर कीनर ऐसे कई आधुनिक उदाहरण पेश करते हैं जिन्हें आप सिर्फ माइंड ओवर मैटर कहकर खारिज नहीं कर सकते।
कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसे मेडिकल जर्नल ने प्रमाणित किया हो।
ब्रूस वैन नाटा का मामला ले लीजिए। एक भयानक ट्रक दुर्घटना में उनकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह कुचल गई थी।
बाप रे।
डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए सर्जरी की और अंत में उनके शरीर में केवल 25 सेंटीमीटर आंत बची थी।
25 सेंटीमीटर? लेकिन एक सामान्य इंसान की छोटी आंत तो कई 100 सेंटीमीटर लंबी होती है ना?
जी, जो खाने से पोषक तत्व सोखती है। 25 सेंटीमीटर आंत के साथ इंसान जीवित नहीं रह सकता। ब्रूस वस्तुतः भूख से मर रहे थे।
फिर क्या हुआ?
एक व्यक्ति ने आकर उनके लिए प्रार्थना की और उसके बाद रेडियोलॉजी रिपोर्ट ने प्रमाणित किया कि उनकी आंत की लंबाई 2 गुनी से भी अधिक बढ़ गई।
एक मिनट, क्या आंत की लंबाई अपने आप बढ़ गई?
हाँ, और जीव विज्ञान के नियम कहते हैं कि आंत के टिश्यू इस तरह से अपने आप फिर से पैदा होकर लंबे नहीं हो सकते। ये शारीरिक रूप से असंभव है।
और ये कोई व्यक्तिपरक राय नहीं है, ये एक ठोस रेडियोलॉजी रिपोर्ट है।
बिल्कुल। और ऐसा ही एक और अचंभित करने वाला मामला कार्ल कॉकरेल का है। उनका टखना टूट गया था,
एंकल फ्रैक्चर।
हाँ, डॉक्टरों ने एक्सरे किया, हड्डी के टूटने की सफेद लाइन साफ दिख रही थी। प्लास्टर चढ़ाया गया।
ठीक है।
कार्ल ने प्रार्थना की और अगले दिन जब डॉक्टर ने दूसरा एक्सरे किया तो वो सन रह गया।
क्या देखा उसने? हड्डी जुड़ गई थी।
डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा टखना टूटा हुआ नहीं है बल्कि एक्सरे देखकर लगता है कि ये कभी टूटा ही नहीं था।
मतलब फ्रैक्चर की लाइन ही गायब हो गई
बिना किसी निशान के।
हाँ।
और कार्ल के पास अपना पहला एक्सरे मौजूद था जो साबित कर रहा था कि 24 घंटे पहले वो हड्डी वास्तव में टूटी हुई थी।
देखिए, यहाँ मैं एक बहुत ही तार्किक और कड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ।
बिल्कुल, पूछिए।
आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने प्रार्थना की और सालों पुराना कमर दर्द चला गया। विज्ञान इसे आसानी से प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। है ना?
प्लेसिबो इफेक्ट,
जहां मरीज का विश्वास उसके शरीर में ऐसे रसायन छोड़ता है जिससे उसे दर्द से राहत महसूस होती है। क्या ब्रूस और काल के मामले भी सिर्फ एक शक्तिशाली प्लेसिबो इफेक्ट नहीं हो सकते?
ये संदेह एकदम सही है, और विज्ञान में हर दावे को ऐसे ही परखा जाता है। दर्द का गायब होना बिल्कुल मनोवैज्ञानिक हो सकता है।
तो फिर इन मामलों में क्या अलग है?
प्लेसिबो इफेक्ट की एक बहुत स्पष्ट भौतिक सीमा होती है। दुनिया की कोई भी मनोवैज्ञानिक सोच आपके शरीर के अंदर नई आंत के ऊतकों को नहीं बुन सकती।
सही बात है।
कोई भी प्लेसिबो इफेक्ट एक्सरे मशीन के अंदर मौजूद टूटी हुई हड्डी को 24 घंटे में इस तरह नहीं जोड़ सकता कि फ्रैक्चर का नामोनिशान मिट जाए।
हाँ, ये ठोस मापने योग्य भौतिक परिवर्तन है
जिन्हें मेडिकल साइंस में चमत्कार की श्रेणी में ही रखा जाता है।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है?
शारीरिक बीमारियों का ठीक होना एक बात है, लेकिन डॉक्टर कीनर का शोध एक ऐसे दावे की ओर भी जाता है जो जीव विज्ञान की अंतिम सीमाओं को पार कर जाता है।
आप मृत्यु से वापस आने की बात कर रहे हैं?
हाँ, मृत्यु से वापस आना। क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में सच में ऐसे दावे मौजूद हैं जिन्हें डॉक्टर्स प्रमाणित कर सकें?
डॉक्टर कीनर ने कई ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। एक बहुत ही प्रमुख मामला डॉक्टर चौंसी क्रांडल का है, जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं।
अच्छा, उनके साथ क्या हुआ? उनके अस्पताल में जेफ मार्किन नाम का एक मरीज लाया गया जिसकी हृदय गति रुक चुकी थी। डॉक्टरों ने आपातकालीन कक्ष में पूरे 40 मिनट तक उसे बचाने की कोशिश की।
40 मिनट? मेडिकल साइंस में तो ऑक्सीजन के बिना दिमाग की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में मरना शुरू कर देती हैं।
बिल्कुल, और जब जेफ के अंग काले पड़ने लगे, जिसे साइनोसिस कहते हैं, तब उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया।
साइनोसिस मतलब शरीर की कोशिकाओं से ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी है?
हाँ, डॉक्टरों ने मान लिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्रैंडल ने वहां खड़े होकर प्रार्थना की और अपनी नर्स से आखिरी बार पैडल से शॉक देने को कहा।
उस नर्स ने तो पक्का सोचा होगा कि डॉक्टर पागल हो गए हैं, मृत शरीर को शॉक देने का क्या मतलब।
लेकिन शॉक देते ही वो मरीज जीवित हो गया और उसकी धड़कन बिल्कुल सामान्य हो गई।
अरे बापरे।
और उससे भी बड़ी बात, 40 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने के बावजूद जेफ को कोई भी ब्रेन डैमेज नहीं हुआ। न्यूरॉन्स का इतने लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है।
ये तो सच में विज्ञान के नियमों को तोड़ता है।
ऐसा ही एक और मामला डॉक्टर शॉन जॉर्ज का है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खुद एक सीनियर डॉक्टर हैं। वे 55 मिनट तक मृत रहे।
55 मिनट?
दिल ने काम करना बंद कर दिया था, किडनी फेल हो चुकी थी, मशीनें हटाने का वक्त आ गया था, लेकिन पत्नी की प्रार्थना के बाद धड़कन लौट आई और वे बिना किसी दिमागी नुकसान के काम पर लौट गए।
और क्या ये घटनाएं केवल पश्चिमी देशों में होती हैं?
नहीं, डॉक्टर कीनर ने मुंबई के एक लड़के विक्रम का मामला भी दर्ज किया है। वो स्विमिंग पूल में डूब गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घंटों बीत गए, जब परिवार शव वापस ले जा रहा था तब वो अचानक जीवित हो गया।
घंटों बाद?
और वो केवल जीवित ही नहीं हुआ, वो तुरंत उठकर खेलने के लिए तैयार हो गया। ठंडे पानी में डूबने वालों को रिकवरी में हफ्तों लग जाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन मैं यहाँ एक बुनियादी शंका प्रस्तुत करूंगा, क्या यह संभव नहीं है कि डॉक्टरों ने दबाव में गलत डायग्नोसिस किया हो? मतलब हो सकता है वे मरे ही ना हो, बस गहरी बेहोशी में हो।
ये एक बहुत तार्किक सवाल है, लेकिन हमें क्लिनिकल लक्षणों पर ध्यान देना होगा। शरीर का नीला पड़ना, 55 मिनट तक हृदय की कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना होना
और किडनी का फेल हो जाना,
ये किसी गहरी बेहोशी के लक्षण नहीं है, ये मृत्यु के क्लिनिकल प्रमाण है। मान लीजिए एक पल के लिए कि ये गलत डायग्नोसिस था और मरीज जिंदा था,
तो भी इतने लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने से वे गंभीर रूप से अपाहिज होते।
एग्जैक्टली, उनका पूरी तरह से स्वस्थ होकर उठना इसे एक साधारण मेडिकल गलती की श्रेणी से पूरी तरह बाहर निकाल देता है।
ये सारी जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने प्राचीन पांडुलिपियों की भाषा से शुरुआत की, ल्यूक की जांच को देखा और फिर आधुनिक मेडिकल फाइलों तक का सफर तय किया। श्रोताओं को इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए?
निष्कर्ष यही है कि ज्ञान की दुनिया में हमें अपने पूर्व निर्धारित विचारों के प्रति थोड़ा लचीला होना चाहिए। हम प्राचीन इतिहास के गवाहों या आज के डॉक्टरों की रिपोर्ट्स को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकते क्योंकि वे हमारे भौतिकवादी नजरिए में फिट नहीं बैठते। हमें अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा।
ये बात एकदम सही है कि हमें हर जानकारी को निष्पक्षता से तोलना चाहिए। और मैं इस गहन चर्चा का समापन एक ऐसे विचार के साथ करना चाहता हूँ जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे।
बताइए।
सोचिए, हमारी पूरी दुनिया का न्याय तंत्र प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर टिका है।
हाँ,
हम एक या दो चश्मदीद गवाहों के बयान पर किसी इंसान को उम्र कैद की सजा दे सकते हैं और पूरा समाज उसे सच मान लेता है।
बिल्कुल ऐसा ही होता है।
तो फिर हम इतिहास और आज के समय के उन हजारों लाखों प्रत्यक्षदर्शियों और डॉक्टरों की गवाही को सिरे से क्यों अनसुना कर देते हैं? केवल इसलिए क्योंकि वे घटनाएं उस ढांचे से बाहर हैं जो हमने अपने लिए बना रखा है।
ये एक बहुत गहरा सवाल है।
क्या हम वास्तव में खुले दिमाग वाले समाज में रह रहे हैं या हमने भी जानकारी को परखने से पहले ही अपने दिमाग में एक अघोषित सेंसरशिप लगा रखी है? श्रोताओं को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में।